والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اب یہاں آپ کو ایک نئے رخ دکھے گا. اللہ کہتے ہیں اس دعا کو مانگنے والوں کو ہم کیا دیتے ہیں, اولائک یجزون الغرفۃ, ہم ان کو بالا خانے دیں گے. غرفہ کمرے کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن اسے مراد ہے ہائی رائز, بہت خوبصورت قسم کے کمرے دیں گے جنت میں. کیونکہ بما صبروا, انہوں نے صبر کیا. اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ. کب تک؟ خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے اس میں. حسنت مستقرن, بہت عمدہ جگہ. ومقامہ, اور مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی. پیچھے کیا آیا تھا آئی 66 میں, سات مستقرن و مقامہ, تو یہاں اس کا اپوزٹ آ گیا, حسنت مستقرن و مقامہ. یہ ہے عباد الرحمن کی اصل پکچر. اور وہ کیا کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر لگ جاتی ہے. یہ ہے اصل میں اس پورے سبق کا تھیم کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ہے عباد الرحمن کی دعا کہ اللہ ہماری بیویاں, ازواج جو ہے وہ زوج, اور زوج مذکر اور مؤنث بھی ہے سپاؤس کے لیے, لیکن باقی ضمائر چونکہ مذکر کے ہیں تو ہم بیوی کہتے ہیں, لیکن بیوی ہے تو مرد ہے تو اس کے لیے, یعنی دونوں کے لیے. اور ذریاتنا, اولاد کے لیے. ذرے سے بکھر جاتے ہیں نا, ایسے تین چار بچے ہوتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں, کوئی ایسٹ میں جا کے بستا ہے, کوئی ویسٹ میں بستا ہے, کسی کو دولت ملتی ہے, کوئی غربت پہ. سوال پیدا ہوتا ہے قرۃ اعین کیا ہے, آج اس کو بھی سمجھ لیں. دیکھیے لفظ قرۃ لکھی اپنے پاس, ایک تو وہ قرۃ ہے نا جو عین سے ہے, پروناؤنسیشن غلط کریں گے تو لفظ ہی بدل جائے. یہ قرۃ نہیں ہے, لاٹری نہیں ہے, ٹاس نہیں ہے, بلکہ قرۃً تھا. قرۃ کا لفظ قاف را را سے, اور قر کہتے ہیں ٹھنڈے کو. اردو میں یہ جو لفظ ہے نا قرار, وہ بھی اسی سے. برف جب پانی کی شکل میں ہوتی ہے تو ہلتی ہے. پانی آپ سانچے میں ڈال کے فریزر میں رکھیں گے تو کیسے ہوگا, ہلے گا. جب وہ جم جاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے. یہ ہے قرہ. اور آئین, آئینن کی جمع. کیا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے اور ہمارے شوہر وہ نیکیاں کریں کہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی سے ہماری آنکھیں چھلک پڑیں. آج آپ کو یہاں آنسوؤں کی بھی ایک بات سمجھ آئے گی. غم کے موقع پہ جو آنسو نکلتے ہیں نا آنکھوں سے, وہ گرم ہوتے ہیں, ہاٹ ٹیئرز ہوتے ہیں. خوشی کی بات سن کے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا, وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں میں رہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی کی آنکھیں بھیگ گئیں, آنکھیں گیلی ہو گئیں, مچلنے لگیں, خوشی کی خبر سنے نا تو وہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. یہ ہے قرۃ العین, کہ ہمارے بچے ہمارے شوہر وہ نیکیاں کریں کہ ان کی نیکیاں دے کر ہم خوشی سے رو پڑے. یہ ہے قرۃ العین. لوگ کہتے ہیں قرۃ العین کیا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچوں کی تنہا سن کر نہیں, ان کی نیکیوں کو سن کر رونا آ جائے. اور ہر خوشی پر بھی آنسو نہیں نکلتے, اس خوشی پہ نکلتے ہیں جس میں جذبات شامل ہوتے ہیں. ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر لگی ہوتی ہے, وہ اکیلے نہیں رہ سکتے, وہ پریشان نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں ان کی فکر ہے. اور یاد رکھیے کہ بیوی بچوں کی فکر کرنا عباد الرحمن ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے دین کی, اخلاق کی کتنی فکر کرتے تھے. سوچیے ذرا, کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ اس کے بیوی اور بچے اور شوہر اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. چند لوگوں کی تفسیر سناتی ہیں آپ کو کہ اس آیت سے انہوں نے کیا سمجھا, کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے, یہ مراد ہے. یہ ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے. اور اگر اولاد اور ازواج کی ظاہری صحت اور عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے. यानी दोनों ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं है कि हम उनकी दुनिया भी देखें, उनको खाता पीता भी देखें। कोई माँ बाप ये नहीं कहते कि अल्लाह हमारे बच्चों को तू बस भूखा मार, इनके तो पास कुछ भी ना, कपड़े भी ना, जूते भी ना, कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि इनको खैर मिल जाए हर तरफ से। यहां से पता चलता है कि अल्लाह के बंदे सिर्फ अपने नफ्स की सलाह और अपने अमल सवाले पर कनात नहीं करते, बल्कि अपने शोहरों, अपने बच्चों और अपनी बीवियों की सलाह की फिक्र करते हैं। और सिर्फ दुआएं नहीं करते, यहां एक बड़ा लतीफ नुकता है, सिर्फ दुआएं नहीं करते, कोशिशें भी करते हैं। उनका किरदार और उनकी दुआएं आपस में मैच करती हैं। और इसके बरक्स जब जाहिद तुम भी जिहादन कबीरा नहीं होता ना, तो दुआएं कुछ और होती हैं, कोशिशें कुछ और हैं। अल्लाह इसको इमाम बना दे और ले जाते हैं उसको किसी दुनिया की तालीम की तरफ। अल्लाह बच्चे को शहीद बना, लेकिन अल्लाह ना करे ये फौत हो जाए। माएँ तो खुद बच्चों को भेजते हुए डरती, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे शहीद हो जाए। पहले दौर की माएँ कहती थी तुम जाओ और वापस ना आओ कभी, तुम जाओ और कभी पीठ ना दिखाना। आज की माएँ कहती जाए मुजाहिद बने लेकिन शहीद ना हो, ये कभी ना, अल्लाह ना करे ये हमारे बच्चे अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए। ज़रूरत है इस बात की कि कोशिश की जाए फिर। और ख़ास तौर पर देखिए वजालना लिलमुत्तकीन इमामा, ये उससे भी खूबसूरत नुकता है कि हमें मुत्तकी लोगों का इमाम और पेशवा बना। बज़ाहिर इसमें अपने लिए जाह और मनसब की बात लग रही है ना, बड़ाई हासिल करने की, जो मन है, क्योंकि सूरह कसस में भी आता है कि तिलक दारुल आखिरत न चलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा। ये नहीं है मतलब, यहाँ ये है कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो भी नेक हों तो हम कितने नेक होंगे, इसको भी जरा समझ लीजिए। एक इमाम साहब हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, तो पीछे शराबी, जानी और हराम करमाने वाले नमाजें पढ़ते हैं। अब ये अलग बात है कि इन कामों के बाद नमाज की तौफीक होती भी है कि नहीं, लेकिन चले जुम्मे की तो लोग पढ़ ही लेते हैं आदतन या रस्मन, या इस्लाम का सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए करने के लिए। यहाँ दुआ कहे कि अल्लाह हम ना सिर्फ नेक हों, हमारे पीछे जो लोग नमाजी हों वो भी नेक हों, नेकों का भी नेक बना दे। अल्लाह हमारे शागिर्द हमसे नेक हों, हमारे बच्चे हमसे नेक हों, यानी हम आखिरी ईंट ना हो नेकियों में, कि बस बाकी लोग हमसे बुरे ही होंगे, मुराद कि हमारे बाद वाले हमसे भी अच्छे हों। धारे के जब, और यहाँ खास तौर पे देखिए इमाम से मुराद माँ बाप होना है, क्योंकि जब बच्चे किसी के मुत्तकी हो जाएंगे तो वो मुत्तकियों का इमाम बन गया, क्योंकि माँ भी इमाम होती है, बाप भी इमाम होता है, तो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। हज़रत इब्राहिम नखई कहते हैं कि इस दुआ में अपने लिए कोई रियासत और इमामत और पेशवाई तलब नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि दीन और अमल में लोग हमारी पैरवी करें और हमारे इल्म और अमल से इनको नफ़ा पहुँचे, ताकि इसका सवाब हमें हासिल हो। इसी तरह मखूल एक मुफस्सिर है, वो कहते हैं दुआ का मकसद अपने लिए तकवा का ऐसा आला मुकाम हासिल करना है कि दुनिया के मुत्तकी लोगों को भी हमारे अमल से फायदा पहुंचे। और इमाम कुर्तुबी इन दोनों को जमा करके कहते हैं कि इन दोनों का हासिल ये है कि रियासत और इमामत की तलब जो दीन के लिए और आखरत के लिए हो वो मजमूम नहीं बल्कि जायज़ है। यानी वो ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में भी गलबा दे, हम दुनिया में भी अच्छे काम करें, फिर गुरफा मिलेगा। हदीस में आता है कि आम जन्नती जो हैं उनको जन्नत में दूसरे लोग ऐसे दिखेंगे जैसे ज़मीन वालों को सितारे दिखते हैं। ये है गुरफा, ऊपर बुलंदियों का मानिए बाला खाने, मुकर्रबीन के लिए वहाँ ऊंचे मुकाम होंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की भी रिवायत है। एक रिवायत में आता है, अबू मालिक से रिवायत है, मुस्नद अहमद की, बहकी की, तिरमिजी की, कि जन्नत में ऐसे गुरफे होंगे जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से झलकता होगा, क्रिस्टल के, ग्लासी डोर कह लीजिए, शीशे के। लोगों ने पूछा है अल्लाह के रसूल ये गुरफे किन लोगों के लिए हैं? अब आप नोट कर ले, ये तो आपके मेरे काम की बात है ना। आपने फरमाया जो शख्स अपने कलाम को नरम और पाक रखे, सॉफ्ट स्पोकन हो और पाक, वल्गर बातें ना करे, और हर मुसलमान को सलाम करे और लोगों को खाना खिलाए और रात को उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। वयुलक्कौना फीहा तहय्यतन व सलाम। फिर जन्नत की दूसरी नेमतों के साथ फरिश्तों की मुबारकबादें मिलेंगी, मुलाकात के वक्त उनको सलाम कहेंगे। याद रखिए कि जैसा अमल वैसी जजा, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بن جاؤ پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ پڑھا, بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاد کبیر سے, اور بات پوری ہو گئی آ کے نسلوں پہ. یہی ہے اس پورے سبق میں بات, کیونکہ آخری آیت پڑھ کے میں آپ کو ان سب کا تھوڑا سا ایک ربط دینا چاہوں گی کہ وجعلنا للمتقین اماما کہہ کے اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ, ان کو بالا خانے ملیں گے, ویلقون فیہا تحیۃً وسلاما, ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے, تھوڑے دن کی یہ نعمتیں نہیں ہیں, فار ایور, حسنت مستقرہ و مقامہ. اور آخری آیت میں دیکھیے اب اللہ کی ڈانٹ, قل ما یعبؤ بکم ربی, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو, کہیں گرو کہیں پڑو, لوگ تمہیں ماریں قتل کریں, تمہیں ٹیررسٹ کہیں, مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. کب؟ لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا. بہت سخت ڈانٹ ہے, پورے قرآن میں یہ انداز نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو راہ ہدایت دکھا دی, اتمام حجت کر دیا, نبی بھیج دیے, عقل دے دی, وعدہ الست کروا دیا, کائنات دکھا دی, سب کچھ کر کے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ میں ہوں, میری بات مانو, اب تم نہیں مانتے تو جاؤ مجھے تمہاری پرواہ نہیں, در در پھرو, لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرو, لوگ تمہیں ماریں, لوگ تمہیں بھونیں, کچھ بھی کریں, اللہ کو تمہاری ذرا برابر پرواہ نہیں ہے. فقد کذب تم, چونکہ تم نے جھٹلا دیا. یا جمعت مسلمہ کے حال پہ کمنٹ نہیں ہے کہ جب میں نے تمہیں ہر نعمت دی تو پھر کمی کس بات کی تھی؟ جیسے ماں باپ پوری کوشش بھی کریں اور بچہ بگڑ جائے تو وہ روتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کسر کیا چھوڑی ہم نے تمہارے لیے, پھر تمہیں عقل نہ آئی. کہ فقط کذب تم فسوف یکون لزاما, ان قریب اب یہ عذاب چمٹنے والا تمہیں پڑے گا, اب پڑے گا تمہیں, یہ انکار جو تم نے کیا اب تمہیں اللہ پوچھے گا. وہ کہتے نا کہ گیند ہمارے کوٹ میں ڈال دی, اگر تم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا تو بات نہیں بنے گی. اب آپ یہ ساری چیزوں کو ذرا دیکھیے کہ جس بات کو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم نے سمجھا وہ کیا تھا, کہ آپ نے لوگوں کو جو دین دیا تھا نا اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے ذات کا تزکیہ, اصلاح, کردار سازی. یہ ساری آیتیں آپ امیجینیشن میں لائیں, امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ایسا ہو جائے جیسے یہ سب ہے تو کیا دنیا میں برائی رہے گی, کرپشن رہے گی, مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کی نظریں رہیں گی؟ تو مسنگ چیز کیا ہے؟ قرآن. آج اس قرآن کو گھر گھر پہنچانا آج کے دور کا جہاد کبیر ہے. نہیں کریں گے نا تو وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. ابھی بھی میں اور آپ کام کریں گے نا تو اس کا اثر شاید ایک صدی کے بعد دکھے, تھوڑا تھوڑا تو دکھتا ہے, کوئی بھی چینج ایک دم نہیں آتی, انقلاب ضرور آئے گا اس سے. اور اللہ کے نبی نے اسی طریقے سے انقلاب پیدا کیا تھا, نعرے نہیں لگائے, ایجیٹیشنز نہیں کی, بائیکاٹ نہیں کیا, مردہ بات نہیں کہا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا مقری, حضرت معاذ کو یمن بھیجا اپنی زندگی میں, حضرت علی کو خیبر کی طرف بھیجا, اور کیا کہا کہ پہلے جا کر ان کو اسلام کا پیغام دینا, قرآن کی دعوت دینا, اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو واپس آ جانا, نہ تمہیں ان کی جگہیں چاہیے نہ تمہیں ان کی گردنیں چاہیے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو تلوار لے. آج اب دیکھیے یہ لفظ کتنا مس انڈرسٹوڈ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, دو ایکسٹریمز ہیں ہمارے ہاں لفظ جہاد پہ بھی اور قرآن پہ بھی. جہاد ایک ہے, جن لوگوں نے واقعی وہ ساری حدیثیں پڑھی کہ جس میں جہاد کی رغبت تھی, وہ کیا کہتے ہیں جہاد کے بغیر کچھ دین ہی نہیں ہے, جن کے مرد جہاد نہیں کر رہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے, وہ تو کافر ہے. جہاد جہاد جہاد, جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے وہ جائے کسی بھی سرحد پہ جا کے جان دے دے. ٹھیک ہے, ہم اس کو پریکٹیکل لیتے ہیں بغیر کسی ایموشنز کے, تاکہ آپ ٹیلی کریں گے کہ آج کے دور میں پریکٹیکلی کیسے ہوگا. آپ اپنے اوپر لیں, میں صرف سمجھانے کے لیے چند نام بولوں گی, نہ تو میری اس میں کوئی سوچ ہے نہ میرا کوئی ارادہ ہے, صرف بات سمجھانے کے لیے. اب آپ کا بچہ لنڈن میں بھلا, یعنی یو کے میں بیسڈ ہے, انگلش آتی ہے اس کو, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہوگی, یہی آتی ہیں نا تین زبانیں. آپ نے یہ حدیث سن لی, بات سن لی کہ جہاد نہیں کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, اور آپ کا بچہ, اور آپ چلتے ہیں, अब वो बच्चा उठा आपका, दुनिया में कहाँ कहाँ जिहाद है, मैं सिर्फ नाम लेने को कहती हूँ, मुझे नहीं पता आजकल वहां है कि नहीं, बॉस्निया का नाम ले लेते। वो बॉस्निया पहुंचता है, कैसे जाएगा? पहले यहां से उसको बॉस्निया जाना पड़ेगा ना, उसके लिए अपना जो उसका जॉब काम या पढ़ना लिखना वो सब छोड़ेगा, स्ट्रगल करके, नहीं जी मुझे जन्नत की हूरें बुलाती हैं, मुझे जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हो सकता है वो एक 15, 16, 20 साल का जवान बच्चा भी नमाजें भी नहीं पूरी पढ़ता, लेकिन किसी के कहने पे जिहाद का इतना गलबा आया कि वो निकल पड़ा। अब आप प्रैक्टिकली देखें, वो बॉस्निया गया, बॉस्निया एयरपोर्ट पे उतरेगा, क्या बताएगा उनको? मुजाहिद बन के आया हूं, कोई आने नहीं देगा। फिर छुपते छुपाते जाएगा ना, इलीगली उस कमरे में देख, सारे कर लिए, मान लिया, हकीकत में अल्लाह उसको एक एक कदम पे अजर देगा। वहां दुश्मन के पास जाने लगा है, वहां सिर्फ एक ही जुबान आती है जो लोग लड़ रहे हैं उनको, वो बॉस्नियन है ना, इसको बॉस्नियन आती है ना, उनको इंग्लिश आती है जिहाद की। उसको कैसे पता कि हु इज एनिमी, किसके खिलाफ लड़ना है, किसके लड़। और ये रियल वाकयात हुए कि बच्चे दूसरे मुल्कों के गए, ऐसी ऐसी जो आर्मीनिया जिहाद पे गए, और इवन अफगानिस्तान, वहां अफगानी बोली जाती है, कि बच्चे हमारे अपने मुसलमानों के जो मोटिवेटेड थे जिहाद से वो गए, लेकिन वहां के जो कमांडर्स थे उन्होंने वापस भेज दिया कि सॉरी आप हमारे काम के नहीं है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर, माहौल का फर्क। आप ये बात करते हैं कि देखिए जिहाद के लिए मौसमों की शिद्दत है, खाने पीने का फर्क, और नतीजा क्या होता है कि मैंने देखा लोग इल्म हासिल करने के जोश में जाते हैं किसी मदरसे में, 2-4 दिन के बाद वापस आ जाते हैं कि उनके तो टॉयलेट ही नहीं अच्छे, वहां तो स्मेल आती है, वहां तो किचन नहीं अच्छा, हमें अपना कमरा बना दोगे, जाएंगे नहीं जा सकते। जिस अंदाज से आज बच्चों के पालने के और तरबियत के मरे अंदाज हैं, उसको आप सामने रख के देखिए, वो बच्चे जो फजर नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो जिहाद करेंगे? इस्लाम में आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है? इस पूरे किरदार को आप घर जाके ना लिखिएगा, इबादत रहमान से हौनन आजजी, पूरा एक किरदार, उसको एक ऐसे डमी सी बना के ना उसके अंदर ये सारी चीजें लिखें, आप देखेंगे इस सारी ट्रेनिंग के लिए कुरान के पानी से गुजरना पड़ेगा। वही लोग वक्त पे स्टूडेंट होते हैं और वही वक्त आने पे फौजी बन जाते थे, यानी मक्तल में भी वही जो मकतब में थे। एक जुमला लिख ले, मकतब में बिठाए बगैर मकतल में नहीं भेज सकते बच्चों को। नबी सल्लम के दौर की बातें क्या थी? नंबर एक, बहुत सिंपल जिहाद था, हर बंदे को अरबी आती थी, घोड़ा भी अपना होता था, तीर तलवार तो उनके पास ऐसी होती थी जैसे हमारे बच्चों के पास वीडियो गेम्स होती हैं। जिहाद आसान था, उठे अपने घोड़े पे, बैठे जज्बे में, आए जाके वहां लड़के आ गए। आज के दौर में बिल्कुल हालात बदल चुके हैं, इतनी ज्यादा बीच में एजेंसीज हैं, इतना कुछ है कि बाज दफा ऐसे लोग जब जाते हैं, ऐसी कहानियां होती हैं, मैं नहीं कहती कोई जाए ना जाए, मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है इसमें, ये मुझे पता है जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं उनको अल्लाह जाया नहीं करेगा, लेकिन आज ये कह देना कि ये बीच के स्टेप्स, कौन से स्टेप्स थे आप दोहराएंगे? वो 6 स्टेप्स जो पहले दिन से चल रहे हैं इस सबक के साथ। सबसे पहला स्टेप दावत, तरबियत, और तीसरा बोले तंजीम, चौथा बोले हिजरत, पांचवा बोले इसी के साथ हिजरत के साथ एक और था जिहाद, जिहाद आगे आ रहा है, किताल और जिहाद, ये सीढ़ियां हैं। सबसे पहले आप तस्किया करें, बच्चों के दिल में ईमान हो, वो ये भी तू ना ले रब्बी हम सज्जदम व क़ियामन तो हो। आप सोचिए आज हमारी जो यूथ है, इमेजिन तो करें पाकिस्तानी यूथ, आपको लगता है कि ये बेस्ट आर्मी बन सकती है? उनका आईपॉड दूसरा बच्चा ले जाए ना, तो वो लड़कियों की तरह रोते हैं, हाय मेरा आईपॉड किधर गया, और मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा, और मेरा लैपटॉप किधर है, और मुझे नाइक के जूते पहनने, और मुझे तो फलां की शर्ट्स पहननी, और मुझे उसकी टाई चाहिए। ऐसी नस्लें अल्लाह ना करे कल इस्लाम के लिए निकलेंगी तो करके क्या आएंगी? मच्छर मार लें तो बड़ी बात है, ये दुश्मन को कहाँ मारेंगे? जुल्म है, वल्लाह ही मेरी बातों को बुरा ना माने, लेकिन आज के दौर में अगर हम चाहते हैं कि ये सारा नक्शा दुनिया का बदले, और ये मैंने और आपने बदलना है, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा में से, ये काम आपके दुनिया में अब कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगी अपने बच्चों पे, ये मैं अपने बेटों पे करूंगी, अपने मर्दों पे करूंगी। जब आप अपने बच्चों के दिल में ईमान डाल देते हैं, खुद ब खुद अल्लाह के आगे खड़े हो जाएंगे, फिर रातों को जागना, दिन को जागना मुश्किल नहीं होता अल्लाह के लिए। जब वो आ जाता है ऐसा ऐसा किरदार साजी होती है, फिर लफ अच्छा नहीं लगता, कौन वक्त जाया करे। आप देखिए दुनिया का भी कोई काम लोग जो करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या वो लफ्जियात में पढ़ के करते हैं? लख बातों में पढ़ने का टाइम होता है डॉक्टर्स के पास? या जो दुनिया में साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, क्या वो इस तरह बेकार वक्त जाया करते हैं कि सड़कों के किनारे रात को आइसक्रीमें खाएं और गुलछड़े और आए? मैंने अपनी आंखों से इस दफा देखा, हम फैसलाबाद से शायद लाहौर आए थे, 10 तारीख तो शाम को था, फिर उसके बाद आए लाहौर में से हम, मेरे हाल रोड थी या मॉल रोड, जो भी बाहर एनी वे वो रोड था, वहां से गुजरे, कोई चीज लेनी थी, गाड़ी वहां रुकी। आंखें में, अल्लाह ना करे कि मैं झूठ बोलूं, यंग लड़की, जरा पाकिस्तान है तो मुसलमान ही थी ना, टाइट जीन टी शर्ट और 4-6 लड़के ये फुटपाथ पे आइसक्रीम वाली दुकान के बाहर खड़े, और जो उनके एक्शन से, और बिलीव मी के दर से मगरब से इशा था, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि रात के 12 से 1 बजे का टाइम था, और हमारे मुल्क की सड़क पे यंग लड़की, और जो वो धमाले डाल रहे और जो लुडियां डाल रहे और अल्लाह जाने क्या पता कर लिया है, ये हमारे मुल्क का हाल है, यहां भी है जहां भी है। अब ऐसे लोगों को कल इस्लाम की बात करें वो तो कहेंगे कि जिहाद तो निकाल ही दो कुरान से, जो अल्लाह के लिए नहीं नमाज के लिए खड़ा हो सकता वो जिहाद में कहाँ खड़ा होगा? हम बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, हम कहेंगे जियो पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम वी लव पाकिस्तान, आई लव माई मुल्क, वट एवर, सिर्फ गिटार पकड़ के, शायद उनको पिस्तौल पकड़नी भी ना आती हो। ये कह रही हैं ये मंजर तो बहुत आम है जी। इधर से किसी ने हाथ खड़ा किया था जी। आप
जी, मुझे भी कल बताया था कि चाइना में उनके पास ना इंटरनेट का फ्रीडम नहीं है, तो जहाँ बिना सोशल नेटवर्किंग वगैरह, तो वो सुबह 7 बजे काम शुरू करते हैं और 11 बजे रात को करते हैं, तो जो यूके या यहाँ के हैं कहते हैं 9 से 5 से 8 घंटे काम है, ये तो खेल
जी
है हमारे लिए।
जी 8 घंटे की शिफ्ट है ना, अमेरिका, कनाडा, इधर भी नॉर्वे, लंदन, सब जगह 8 घंटे को कहते हैं। तो जो जिंदा कौमें आज जापान और ये चाइना ले, ये 8-8, 10-10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, और उनका हाल, वो चीजें जो हमारे मुल्कों में अलाउड है, ये गूगल सर्च कभी आप अंदर की कहानियां तो पढ़े, अपने मुल्कों में बैन है। जो साइट्स हमारे मुल्कों में आम कर दी जाती हैं या आम पब्लिक यहाँ भी खोल सकती है, वो बनाने वाले अपने मुल्कों में नहीं चलाने देते। जी आप
जी, हम अपने बच्चों को कैसे सारा वक्त तो वो लफ्जियात में जो कुछ मेरी सिर्फ 12 ईयर्स की बच्ची है, और जो कुछ वो आजकल आके मुझे बताती है कि वो क्या वहां पे बता रहे हैं, आपको मुझे 1 मिनट भी उसको वहां पे भेजने का दिल नहीं करता, और मेरा यही दिल करता है कि मैं कौन सा ऐसा क्या ऐसी चीज हो, और हमारे ख्याल में कुछ नहीं है। जब वो स्कूल से इतने इंडल्ज होके आते हैं उन चीजों में जो सिर्फ लफ्जियात पे बेस कर रही है, तो आप बताएं
इतनी क्या मजबूरी है कि हम वो कहते हैं कि भेड़ों के छज्जे में हाथ डाल दें? अनपढ़ रह जाएंगे ना बच्चे, ABCD नहीं आएगा, हम्प्टी डम्प्टी नहीं आएगा, 2+2 नहीं आएगा, 6 मुसलमान तो बन जाएंगे। मैं आपको 10 ही मिसालें ऐसी दे सकती हूँ आज के दौर में भी, कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इन स्कूलों से हटाया उठाया, खुद उनके लिए मारे मारे फिरे, तो अब बच्चे लाइन पे, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग इस वक्त रेवोल्यूशनरी दौर में, आपने कभी देखे वो क्या होता है राउंड अबाउट? राउंड अबाउट क्या होता है? हर लम्हे गाड़ी का रुख मुड़ता है ना, दायरे में हर मौका एक नहीं होता, वो उसके आगे पीछे चेंज ही होगा। ये जो हमारे मुसलमानों की इस वक्त जनरेशन है, ये राउंड अबाउट है, हम टर्न हो रहे हैं। इस वक्त कोई चीज भी आइडियल नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है कि जो कर सकते हो वो कर लो ना। हम ये स्कूल एकदम बदल सकते हैं, ना हम एयरपोर्ट ठीक कर सकते हैं, ना हम सबको कपड़े अच्छे पहना सकते हैं, ना मॉल्स को ठीक कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, अंदर की दीवारें मजबूत कर दें अपने बच्चों की। साहबा का हाल देखिए, कहानियां मैं इतनी मैंने सोची हुई थी, फिर मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन यकीन करें हमारे असलाफ की कामयाबी की वजह ये थी कि किरदार ये थे जो इबाद रहमान के। आज आप देखिए कि रशिया ने जब एसीस बनाए, एक वक्त आया, आज से मेरे ख्याल 15-20 साल पहले की बात है, कोड़ियों के मोल, यानी ये बात तब की मैंने सुनी हुई, आज से 10 साल पहले की सुनी होगी, जो मेरे लाल शहर में, पाकिस्तान में 2-2 हजार रुपए का एयर कंडीशनर बिका था। किधर से ये सारे आ गए? का रशिया से आए। किसको दिए? पाकिस्तानी आर्मी को दिए। क्यों दिए? कि इनको आराम मतलब करो। वो चीजें जो बाहर 10-10 हजार की हैं, वो हमारी फौज को वो मुफ्त में देने को तैयार है। तो पाकिस्तान में हर चीज महंगी है दिन ब दिन, डिश क्यों सस्ती है, इंटरनेट कनेक्शन क्यों सस्ते हैं, ये फोन पैकेज क्यों सस्ते हैं मुफ्त के मारे, एक एक बंदे के हाथ में। मैंने इधर बाहर अमेरिका कनाडा में नहीं कभी देखा, ना लंदन नॉर्वे, पाकिस्तान में जब जाती है ना, हमारे अपने घरों में एक एक फोन में 2-2 सिम है और 2-2 फोन रखे हुए। मजाक करते हैं लोग कि आप माशाल्लाह 1 से 2 हो गई हैं आप, और एक फोन आता है तो 7 दूसरे, चले कारोबारी कारोबार कर रहे होंगे, ये लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? एक फोन में 2-2 सिम्स है, ड्यूल सिम्स, میں نے نہیں کبھی زندگی میں فون رکھا. اور توحید ہی اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ ساری خرافات کیا ہیں, ہماری یوتھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.